मधुर मन विश्व वेदना में तप प्रतिपल जगजीवन की ज्वाला में गल बन अकलुष उज्जवल और कोमल तप्रे विधुर विधुर मन अपने सजल स्वर्ण से पावन रच जीवन की पूर्ति पूर्णतम स्थापित कर जग अपनापन ढल रे ढल आतुर मन तेरी मीठी मुक्ति ही बंधन है गंधहीन तू गंधयुक्त बन निज अरूप में भर स्वरूप मन मूर्तिमान बन निर्धन गल रे गल निष्ठुर मन। कविता है ये सुमित्रानंद पंत की। मन पावन कैसे होगा? तप से। तप रे मन मधुर मधुर मन निष्ठुर निष्ठुर मन तप। जब तक तपस्या नहीं तब तक जीवन का वास्तविक आनंद नहीं। कल की अव्यक्त वाणी बाबा ने किससे बात की? कुमारों से और कुमारियों से। क्या बातें की? अंग्रेजी में शब्द है स्वीट नथिंग्स। दो प्रेमी मिल के आपस में जो बातें करते, उसे कहा जाता है स्वीट नथिंग्स। वैसे बाबा ने भी हमसे कल बातें की। कौन सी बातें की? कुमारों से बातें की। आज हम कुमारों से करेंगे, कल कुमारियों से। पतंजलि योग सूत्र में एक वाक्य है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। एक कलियुगी नव युवक ये पढ़ता है, और जब पढ़ रहा होता है तो देखता है एक पतला दुबला सन्यासी उधर से आ रहा है। उसे लगता है इसकी थोड़ी इसके साथ हंसी मजाक की जाए। वो उसे सुनाता है, कहता है कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, योग सूत्र में लिखा है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। जो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है, स्थित है, उसके अंदर अद्भुत सामर्थ्य होता है, और तुम में तो कोई भी सामर्थ्य दिखाई नहीं देता है। तुम इतने दुबले, इतने पतले, कहाँ है तुम्हारी शक्ति, कहाँ है तुम्हारा सामर्थ्य? हम देखो कैसे मोटे ताजे, खाते पीते घर के दिखने जैसे। तुम ब्रह्मचर्य पालन किए हुए, तुम्हारी शक्ति कहाँ है? क्यों तुम इतने ऐसे हो, पतले दुबले? तुमसे तो अच्छे हम हैं, कम से कम जी तो रहे, खा पी के स्वस्थ भी है। वो सन्यासी चुपचाप सुनते रहता है। जब उस नवयुवक का भाषण पूरा होता है तो सन्यासी उसे कहता है चलो मेरे साथ, और उसे ले जाता है। बाजू में ही एक अरण्य है, अरण्य में सन्यासी की गुफा है, और वहां जाकर सन्यासी इशारा करता है। जैसे ही इशारा करता है, तीन शेर बाहर निकलते हैं एकदम दहाड़ लगाते हुए। वो युवक तो घबरा कर धड़ाम से नीचे गिरता है सन्यासी के चरणों में, मुझे बचाओ। सन्यासी एक दृष्टि डालता है उन तीनों शेरों, और वो तीनों ही शेर दुम हिलाते हुए जैसे पालतू बन जाते हैं। वो सन्यासी कहता है ये है मेरी शक्ति, दिस इज द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में जैसे ही योगी स्थित होता है, अद्भुत सी शक्तियां प्रकट होने लगती है, जिससे वो केवल स्वयं को नहीं, धीरे धीरे दूसरों को भी वश में करने लगता है, प्रकृति को भी वश में करने लगता है, जानवरों को भी वश में करने लगता है। उसकी वाणी में ही ऐसा सम्मोहन है, खींचता है। खींच कौन सी है पता नहीं, पर नशा सा है, उन्माद सा है। तो बाबा चाहते हैं हम भी कैसे बन जाए ऐसे क्रांतिकारी कुमार। तो आज की क्लास कुमारों को समर्पित। तो सभी कुमार तैयार है ना? एक क्रांतिकारी कुमार जीवन, और बिना क्रांति के कुमार जीवन ही नहीं होता। स्वामी रामतीर्थ ने जब वो सन्यासी नहीं थे, सन्यास जीवन से पहले पंजाब में गणित पढ़ाते थे, तब उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था कि परीक्षा के दिनों में वो विद्यार्थी कॉलेज के जो विकारों की तरफ आकर्षित होते या विकारों में जाते हैं, जो कामोत्तेजना के प्रभाव में है, या जिनकी शादियां हो गई है, उनका परफॉर्मेंस और वो जो एकदम एकाग्र है, जो काम और काम से संबंधित सभी उत्तेजनाओं से मुक्त है, वो विद्यार्थी। ये जो दूसरे नंबर के, इनका कंसंट्रेशन, एकाग्रता, फोकस बहुत ज्यादा होती, और इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है एग्जाम में। और जो विद्यार्थी परीक्षा काल के पहले या परीक्षा काल के समय, उस समय जिनका विवाह हो गया, कॉन्सेंट्रेशन खत्म, समाप्त, रहता ही नहीं, हलचल में आ जाता है मन, डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है। नेपोलियन क्या कहता था, इम्पॉसिबल, ये शब्द असंभव शब्द किसकी शब्दकोश में है, मूर्खों के शब्दकोश में है, दहाड़ लगा के कहता था, पर उसकी हार हो गई थी वाटरलू के युद्ध में। क्यों? क्योंकि पहली रात, युद्ध की पहली रात उसकी विकार की रात थी, जीवन ऊर्जा बह गई, हार गया। उसी तरह महाभारत में दो पात्र, एक भीष्म और एक अभिमन्यु। एक की अभिमन्यु बहुत शक्तिशाली था, सबको हरा दिया, अंदर घुस गया पर निकल नहीं पाया, हार हो गई। भीष्म नैष्टिक ब्रह्मचारी है, नैष्टिक ब्रह्मचर्य अर्थात लाइफ लॉन्ग, आजीवन, जीवन पर्यंत, ता उम्र, उसमें शक्ति है, इतनी शक्ति कि सब हिल गए, अर्जुन भी हिल गया। वो तो दिखाया है, कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, प्रतिज्ञा थी मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो दिखाया है ना उसमें, क्या किया, वो चक्का ही उठा लिया और भागते हुए कृष्ण उसका पैर पकड़ते हुए, चित्र देखा होगा सबने, अर्जुन पैर पकड़ते हुए। तो ये पावर कौन सी थी ब्रह्मचर्य की, इतना तीरों से छेद दिया गया, फिर भी महाभारत में भीष्म के दिए हुए प्रवचन है, बहुत ऊंची बातें युधिष्ठिर को सुनाई हुई भीष्म ने, नीति, धर्म, ब्रह्मचर्य सब पर, कैसे सुनाई है, जब वो शैया पर है, वहां पर बैठ के, ये ब्रह्मचर्य का प्रताप है। उसी और दूसरी तरफ है अभिमन्यु, वो भी शक्तिशाली है, वो भी गया, परंतु जाने की पहली रात विकार की रात थी। पांडवों का बीज तो उसके हार हो गई। एक माली है, बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत धन कमाता है, और धन कमाने के बाद एक बगीचा तैयार करता है, और बगीचे में बहुरंगी फूल है, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल है, बहुत मेहनत की फूलों को लगाने में, देखभाल करने में, खाद डाली, सब कुछ किया, और मंथ मास के आखिर में क्या करता है, सभी फूलों को एकत्र करता है, उनका इत्र बनाता है, इत्र बनाकर उसको नाली में डाकर डाल देता है। क्या ये बुद्धिमान माली है या मूर्ख? मूर्खों का महामंडलेश्वर और वर्तमान युवा जगत क्या है फिर? देह में निरंतर जीवन रस उत्पन्न हो रहा है, कितना समय लग जाता है उस ऊर्जा को उत्पन्न होने के लिए, वो वाइटल फ्लूइड उत्पन्न होने के लिए, उसको ऐसे ही बहा देना किस लिए? क्षणिक सुख के लिए। ब्रह्मचर्य की भट्टी में हमने इसकी चर्चा की थी। तो ये मूर्ख माली है या बुद्धिमान माली है? ये ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, ये ऊर्जा नीचे बहती है तो शरीरों को जन्म दे सकती है, देती है, वही ऊर्जा यदि रोक दी जाए ओजस बन जाती है, ट्रांसम्यूटेशन, शक्ति बन जाती है। वो ऊर्जा जो नीचे बहती है संसारी व्यक्तियों की भोग विलास और काम वासनाओं में, वही ऊर्जा जब ऊपर बहती है इसे कहते उर्ध्वरेता योगी, ओजस में परिवर्तित हो जाती है। और ये शक्ति क्या करती है? चमत्कार करती है। बुद्धि कैसी हो जाती है ऐसे व्यक्ति की? बुद्धि प्रखर, बुद्धि प्रचंड तेज, वाणी में बुद्धिमत्ता, याददाश्त, स्वास्थ्य। नीचे बहती है बीमारियां, भोग के संस्कार पक्के हो जाते हैं। और सबसे गहनतम संस्कार है ये भोग का, शक्ति को नीचे बहाने का। शक्ति ऊपर ऊपर बहने लगती है, शक्ति बहती है। कोई स्थूल फिजिकल फ्लूइड रस ऊपर बहने का कोई मार्ग नहीं है, उसमें सूक्ष्म ऊर्जा है। कहते हैं जो ऊर्जा व्यक्ति एक काम विकार में गवाता है, एक बार के विकार में, 10 दिन का फिजिकल लेबर शारीरिक श्रम के बराबर है, या फिर 3 दिन का मानसिक श्रम के बराबर। वन टाइम शक्ति का बह जाना, फिर भी व्यक्ति ये घाटे का सौदा करता है। किस लिए? क्षणिक सुख के लिए। और ये सबसे बड़ा एडिक्शन है संसार का, इससे बड़ा और कोई भी एडिक्शन नहीं है। इसके सामने जो भी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, मसाला, ये सब बहुत ही चिल्लर है। ये मूल न चाहते हुए भी व्यक्ति इसकी तरफ आकर्षित होता है। तो बाबा कुमारों से बातें कर रहे हैं, पहले आप बताएंगे क्या कहा, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या क्या कहा कुमार बताएंगे। पांडव भवन बनाने वाले हैं, परंतु ईस्ट वेस्ट में नहीं चले जाना, समस्या स्वरूप नहीं बन जाना। पांडव भवन बना भी है कई जगह पर, कई सारे सेंटर्स पे कमरे है, वहां पे नाम है ऊपर पांडव भवन। 4 कुमार रहते, 5 कुमार रहते, 6 कुमार रहते। निर्विघ्न कुमार, कुमार अर्थात निर्विघ्न। और सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है कुमारों के जीवन में? अकेलापन। क्या चाहिए? कोई साथी, किसी का साथ, कोई बात को सुनने वाला, कोई भोजन बनाकर थक कर रूम पर आने के बाद थाली सामने हाजिर, बर्तन धोने वाला, वाला या वाली। और क्या चाहिए? गोद में सर रख के आराम कर सके, और क्या चाहिए? पूछने वाला, पूछने वाली, केयरिंग, ये सब चाहिए। ये शुरुआत में है, बाद में कुछ और हो जाता है। एक पत्नी अपने पत्नी से कहती है, आज मैं पहली बार तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। वो कहता है, कल ही तो मांगा था। वो कहता है, तुम ठीक से सुनते नहीं। मैंने कहा, आज का पहली बार है, कल का पूरा हुआ। उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा विघ्न, सबसे बड़ी माया, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कोई चाहिए, साथी चाहिए। एक मुरलियों में आता है ना, विकार के लिए शादी नहीं करते, कोई कोई कंपेनियन के लिए करते विदेश में। तो वैसा कंपेनियन चाहिए, साथी चाहिए। और क्या कहा बाबा ने? दौड़ बहुत लगाते, सेवा बहुत करते, निर्विघ्न रहना अर्थात क्या? ये तुम्हारी महानता भी है और ये तुम्हारी स्पेशलिटी, विशेषता भी है। और सबसे बड़ा विघ्न और सबसे योग्य कुमार की क्या परिभाषा है? कुमार की परिभाषा, योग्य कुमार की, विश्व को चैलेंज करते हैं, ठीक है, वो तो है परिभाषा। असंभव संभव चैलेंज करते। परिभाषा क्या है? योग्य कुमार अर्थात जिसका एक बाप के अतिरिक्त और कोई कंपेनियन नहीं, और किसी की कंपनी की उसको आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। जो ये कर दे, बाबा बलिहार है उस पर। बाबा ने कहा, ऐसे बच्चों को देखकर बाबा क्या करते हैं उनको, दिल से मुबारक देते हैं ऐसे कुमारों को जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है। वो चैलेंज करने वाले असंभव संभव हम करके दिखाएंगे, हम निर्विघ्न रहकर दिखाएंगे। तो कुमार शब्द में पांच शब्द छिपे हैं। सबसे पहला तो के अर्थात क्रांतिकारी, कुमार अर्थात ही विद्रोह, महासंग्राम करने वाले। किसके साथ विद्रोह? अपने ही संस्कारों के साथ विद्रोह, अपने ही संस्कारों के खिलाफ विप्लव, रिवॉल्ट, एक जंग, दूसरों के खिलाफ नहीं, अपनी ही भीतर जो रावण की सत्ता है उसे उखाड़ कर फेंक देना, वो क्रांति। और क्रांति कब आती है? क्रांति आने के लिए क्या चाहिए? क्रांति कब आती है? एक देश है जिस पर एक राजा है, बहुत अत्याचार करता है सब पर, सहते जा रहे, 100 साल से सह रहे, फिर एक दिन अचानक एक आवाज उठाता है और उसको लोग जुड़ जाते उसकी आवाज के साथ, और फिर क्रांति होती है, और फिर वो सारी हुकूमत को उठाकर फेंक देते हैं। तो क्रांति होती कब है? जब अंदर बहुत अतृप्ति होती, असंतुष्टता होती, ऐसी असंतुष्टता उत्पन्न हो जाए इस संसार के प्रति, अच्छा ही ना लगे ये संसार, तब क्रांति अंदर घटित होती है। कहां मैं आकर्षित हूं इन भोग विलास में, इसमें मिला क्या है किसको, कौन सुखी हुआ है आज तक इसमें? सब डूबे हैं, मर गए, मिट गए। अतृप्ति जब होती है, असंतुष्टता, ग्रेट डिससैटिस्फैक्शन जब होता है, तब क्रांति होती है। पहला। दूसरा, क्रांति कब होती है? शॉक जब लगता है तब क्रांति होती है, धक्का लगता है, जैसे अंगुलीमाल और वो वाल्या और रत्नाकर डाकू वाल्मीकि का, वो दिखाया ना, दोनों को क्या हो गया? शॉक लग गया, एकदम क्रांति। तुलसीदास, शॉक। तो क्रांति के लिए क्या चाहिए? शॉक, झटका चाहिए, झटका। जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, भर्तरी, पत्नी से कितना आसक्त था, जब झटका लग गया तो फिर एकदम वैराग उदय हो गया। शॉक चाहिए, शॉक। शौक तभी लगता है जब व्यक्तियों का, वस्तुओं का, स्थितियों का, परिस्थितियों का वास्तविक रूप हम देख पाते हैं। हम सोचते हैं ये लोग मुझे कितना प्यार करते, कितना प्यार करते। जब इस भ्रम से मुक्त हो जाते, विभ्रम से मुक्त हो जाते, वो डिसइल्यूजनमेंट की अवस्था में क्रांति होती है। जब डीहिप्नोटाइज्ड हो जाते, अभी हम हिप्नोटाइज्ड है, किस बात से? ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पिता, ये मेरा बाप, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, कितने मुझसे प्यार करते, ये मेरा परिवार, कितना ये लोगों का मुझसे प्यार है। अगर मैं चला जाऊंगा तो इनका क्या होगा, ये विचार भी एकदम से झंझनाट अंदर लाता है। और वो लोग किसके इंतजार में? प्यार भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, है। पर भगवान परमात्मा प्रेम की तुलना में ये सारे प्रेम तुच्छ है। कौन है उस प्रेम के आगे? वो विराट है, ये शूद्र है, ये स्वार्थी है। आई लव यू एंड यू लव मी, बस यहां तक ही सीमित है, इसके ऊपर नहीं निकल पाते, ये यहीं तक है बस। अगर हम दोनों के बीच में कोई आ गया तो हमारा शत्रु है फिर, वो ये वाले प्रेम है। शौक चाहिए। तीसरा, क्रांति लाने के लिए क्या चाहिए जीवन में? एक व्यक्ति देखता है शिकारी जंगल में, एक शेर एक शेरनी मर गए, किसी ने मार दिया। छोटा सा बच्चा है, वो बच्चे को घर ले आता है, पर उसकी पालना कैसे करता है? घास फूस देकर, शाकाहारी भोजन से। वो शेर का बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और घास ही खाता है, गांव में घूमता है, सब लोग उसे दूध पिलाते, कोई कुछ, किसी की भी गोदी में चला जाता है, एक दिन शिकारी बैठा ऐसा, उसे पैर में चोट लग गई और वो जो है शेर का बच्चा, वो खून को चाट लेता है और बस जैसे ही चाटा, शाकाहारी शेर मांसाहारी अपने मूल रूप में आ गया। दहाड़ लगाई उसने जोर से, सब डर गया, वो तो शिकारी, ये क्या हो गया, और एक ही झपटे में शिकारी को मार डाला। स्वाद आते ही क्रांति हो गई। तो क्रांति कब होती है? जब टेस्ट। अब तक कुमार जीवन की टेस्ट ही नहीं आई है तो क्रांति कैसे होगी? ब्रह्मचर्य की टेस्ट एक बार आ जाए तो क्रांति होगी। निर्बंधन जीवन, जहां मर्जी है वहां जाओ। गृहस्थी जा सकते हैं क्या कहीं? आगे ना, क्या आगे ना था ना पीछे। अच्छा, वो वाला। तो कुमार जीवन अर्थात निर्बंधन जीवन, कुमार जीवन अर्थात कोई बंधन नहीं, किसी का भी बंधन नहीं। बच्चों बिच्चों को नहीं लेके जाना स्कूल में बैग पकड़ के। स्वाद चाहिए, अलौकिक जीवन का स्वाद, अध्यात्म का स्वाद आ जाए तब क्रांति घटित होती है, तब तक नहीं। तो ये तीनों ही चीजें चाहिए। पहली बताई अतृप्ति, ग्रेट डिससैटिस्फैक्शन, स्वीकार ही नहीं है ये, कब तक सहन करते रहेंगे ये राज्य को। अब क्रांति, आवाज उठाएंगे, विद्रोह करेंगे। 1857 की क्रांति कैसे हुई थी? ऐसी हुई थी ना, पर उसको दबा दिया गया था, वो दूसरी बात है, पर क्रांति तो हुई थी। बीज तो पड़ गया, वहीं पे पड़ गया था बीज तो। तात्या टोपे, मंगल पांडे, झांसी की रानी, गुस्से से, वो पहले में ही अतृप्ति है, असंतुष्टता है, स्वीकार नहीं है। कब तक सहन करे अत्याचार को, ये तानाशाही को, तब क्रांति आती है। तो ऐसी क्रांति लानी है। तो कुमार अर्थात क्रांतिकारी, क्रांति की मशाल लेकर निकलने वाले। और जब तक हम में क्रांति नहीं आएगी तब तक हम दूसरों में भी क्रांति नहीं ला सकते। दूसरा, कुमार अर्थात ऊर्ध्वरेता योगी। ऊर्ध्वरेता योगी अर्थात नैष्टिक ब्रह्मचारी। नैष्टिक ब्रह्मचारी अर्थात आजीवन अखंड ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। कोई नहीं चाहिए, ना किसी साथी की जरूरत है। वुमन, आई डोंट नीड यू। किसी से कोई संबंध नहीं, सब है ठीक है, परंतु अंदर कोई नहीं चाहिए। डिनाय योर मदर एंड डिनाय योर फादर। He that loveth his brother or sister more than me is not worthy of me. Jesus कहता है, जो अपने लौकिक भाई से, अपने लौकिक बहन से मेरे से अधिक प्रेम करता है, आउट, मुझे नहीं चाहिए वो। जो अपने लौकिक पिता से और अपने लौकिक माँ से मुझसे अधिक प्रेम करता है, आउट, मुझे नहीं चाहिए वो। मैं और केवल मैं। बाबा क्या कहते हैं? केवल पाप ही संसार है, वही सब कुछ है, उसमें ही सब कुछ है, सारे संबंध। ऊर्ध्वरेता योगी अर्थात ब्रह्मचारी अब संपूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित है, और ब्रह्मचर्य कोई सहज हो गया है वहां पर। संसार में भी ब्रह्मचारी रहे, बड़े बड़े ब्रह्मचारी रहे, परंतु कहीं ना कहीं खेचातान है। यहां जो ब्रह्मचर्य है वो सहज है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य की नींव प्रभु प्रेम है, इसलिए यह ब्रह्मचर्य बहुत सहज है। तो कुमार अर्थात ब्रह्मचारी, कुमार अर्थात वो सारे सेक्सुअल ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए और नष्ट कर दिए। कौन कौन से वो उत्तेजनाएं हैं, कौन कौन सी वो ट्रिगर्स है, वो ट्रिगर क्या क्या हो सकते हैं, वो कहां से आते हैं? कुछ भी हो सकते हैं, वो चित्र हो सकता है, कोई गीत हो सकता है, कोई म्यूजिक हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई दृश्य हो सकता है, कोई पोस्टर हो सकता है, क्लोथ्स हो सकते, कपड़े हो सकते, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पुरानी यादें हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है। ये सारे चार प्रकार के स्टिमुलस हैं। ऑडिटरी अर्थात आवाज, विजुअल देखना, देखा, ऑल्फैक्टरी सुगंध, और चौथा टैक्टाइल, पांच ले लो स्पर्श, और पांचवा साइकोलॉजिकल। मन ही मन व्यक्ति विचार करते रहता है, फैंटेसीज, डूबते जाता है उनमें, सोचते जाता है मन ही मन। एक है विकार, एक्चुअल विकार, एक है मन। बाइबल में लिखा हु लुक्स आफ्टर वुमन विथ लस्ट हैज ऑलरेडी कमिटेड एडल्ट्री इन हिज हार्ट। केवल सोचा है उसने, ऑलरेडी मन में काम विकार में वो चला गया है। तो ये चारों ही पांचों ही स्टिमुलस को एक एक करके जो हटा दे वो कुमार। वो सारे स्थान जहां पर विकार उत्पन्न होने की संभावना, ऐसे लोगों के साथ जाना ही नहीं, ऐसे स्थान पर जाना ही नहीं, वो सारी कंपनी हटा दी उसने। और कंपनी केवल मित्रों की नहीं है, कंपनी किताबों की कंपनी, मोबाइल, बहुत सारी चीजें, वो सारे स्टिमुलस हटा दिए हैं। ट्रिगर्स कहा जाता है इनको। वैसे व्यक्ति निर्विकारी रहता है, पर जैसे उत्तेजना वाला भोजन सामने आ गया, जैसे खाया और अधिक खा लिया, बस ऊर्जा रात को बह जाएगी। ईरान का बादशाह अपने चिकित्सक से पूछता है मनुष्य को कितना खाना चाहिए। वो कहता है 100 दिरहम, 700, 507 ग्राम। वो कहता है इतना कम, इससे तो क्या पेट भरेगा। वो कहता है इससे ज्यादा खाओगे ना, वो पाचन तंत्र पर बोझ होगा और ऊर्जा नीचे बह जाएगी। तो कुमार अर्थात ऊर्ध्वरेता योगी, उसकी ऊर्जा ऊपर बह रही है। रिटेंशन ऑफ द वाइटल फ्लूइड इज ब्रह्मचर्य। क्या किया जाए ऊर्ध्वरेता अवस्था आने के लिए? ब्रह्मचर्य खंडित है ना, वो सारे कारणों को हटाना पड़ेगा जहां संभावना। कोई संबंध ऐसा बना के रखा है प्रेमपूर्ण कि जिसमें संभावना है, रिजेक्ट, हटा दो उसको। वो हर चीज जो ब्रह्मचर्य में बाधा है हटाते जाओ, हटाते जाओ। इसके लिए योगियों के लिए कहा जाता है जल्दी भोजन पूरा कर ले ताकि सोने से पहले वो पच जाए। बेस्ट टाइम कौन सा है डिनर का? 206 के बीच योगियों का रात्रि भोजन पूर्ण हो जाए। बेस्ट टाइम 4 o'clock। यही डिनर है। 4 o'clock डिनर पूरा हो गया, उसके बाद ना खाना ना पीना, कुछ नहीं, बंद। तो ऊर्ध्वरेता योगी अर्थात सारे ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना और एक एक को हटाते जाना। अमृत वेला उठना, भोजन पर संयम, ये सब ऊर्ध्वरेता योगी की तपस्या। आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये सब जरूरी है। शरीर को मूवमेंट चाहिए, नहीं तो स्थूलता आती है, आलस आता है। इसके लिए 24 घंटे में एक बार पूरा पसीना आ जाए ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए। सारे कुमारों के लिए तो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी। वो भट्टी में भी कहा था लास्ट वाली, कितने पुशअप्स? 150 मिनिमम 24 घंटे में। वर्कआउट्स, एग्रेसिव वर्कआउट, जो करना है करो, पर करो, कुछ तो करो, वो बहुत जरूरी है इस ऊर्जा को के यू एम एम अर्थात मर जीवा, मर चुके हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाना है, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया काम की नहीं, हम क्या है, मर चुके हैं। जीवंत मृत्यु, महावीर ने अपनी मां से कहा कि मुझे संन्यास लेना है। मां ने कहा बिल्कुल नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं यू आर नॉट अलाउड। कोई दूसरा होता तो झगड़ा करता चला जाता, पर महावीर चुप बैठे रहे, मान गए, इतनी आसानी से मान गए। क्योंकि जब वैराग का संकल्प आता है, संन्यास का संकल्प आता है, सब कुछ छोड़ने का, व्यक्ति किसी की नहीं सुनता है। तब वो सुन लिया उन्होंने मां की बात, मां की मृत्यु हो गई, अब निकल पड़े। पर भाई था, उसने कहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं जाने देंगे तुमको, इधर रहो, काम करो, सब कुछ करो। परंतु उसने तो कह दिया था माँ से, जब तक माँ है तब तक रहूँगा, बाद में चला जाऊँगा। अब वो जीवित तो रह रहे हैं परंतु जैसे मुर्दे हैं। आखिर भी भाई ने कह दिया इससे तो अच्छा तुम चले ही जाओ ना तो काम के हो, ना कुछ बात करते हो, ना कुछ करते हो, ना हंसते हो, ना कुछ भी नहीं करते, एकदम मरे मरे से हो। तो योगी अर्थात मरो हे जोगी मरो, ये मरण है मीठा। जिंदा लाश, गोरखनाथ ने कहा है मरो हे जोगी मरो, ये मरण है मीठा। बाबा ने कहा लटक जाओ फांसी पर, क्या करो, लटक जाओ, मर जाओ, मर चुके हो तुम। जीवंत मृत्यु, कुमार अर्थात मर जीवा, वो जो पुराना जीवन था अब तक का भोग विलास का, वो खत्म हो चुका है। कुमार जीवन अर्थात तपस्वी जीवन, त्याग का जीवन, जिस जीवन में त्याग नहीं वो कुमार जीवन कैसा। संसार जिन चीजों को भोग रहा है वो चीजें हमारे लिए व्यर्थ हो चुकी है, वो कुमार जीवन। उसे रस है एकांत में, कल कहा ना बाबा ने, एकांत, एकांत प्रिय है वो। किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई मुझे साथी मिल जाए, कोई मेरे साथ वॉक के लिए जाए, साथ में लेके जाते हैं ना वॉक के लिए, मुरली में भी साथी चाहिए, नाश्ते के लिए भी साथी चाहिए, सेवा के लिए भी साथी चाहिए, दोनों मिलकर अच्छी सेवा होती है उससे। क्यों चाहिए कोई, अकेले जाओ, निकल पड़ो। लड़ाई है, संग्राम है, महासंग्राम, निकलो अकेले। बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, चल अकेला चल, तेरा मेला पीछे छूटा रहे, चल अकेला चल, एकला चलो रे, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। चाह कि कोई चाहिए, बाबा ने क्या कहा था लास्ट संडे के, लास्ट संडे की मुरली में, जो स्नेही होंगे उनको चौथी निशानी उनकी निराकार, उनको साकार में यही अनुभव होगा। वो ये चतुराई नहीं करेंगे कि बाबा साथी चाहिए, आप तो साकार दुनिया में, यहां एक साथी चाहिए, ये सब बाबा ने क्या कहा है, ये सबको, ये तुम्हारे अंदर इतनी बातें बोझ वाली भर के रखते हो इसलिए चाहिए शेयर करने के लिए। अगर ये बातें ही नहीं रखो सच्चे दिल वाले अर्थात तो उनके इसमें ऐसी बोझ वाली बातें ही नहीं है तो किससे क्या शेयर करें। फोन पर लगे रहते हैं ना लोग, कैसे बात करते हैं, क्या बात कर रहे हो और किससे बात कर रहे पता ही नहीं चलता है क्योंकि बात में कोड वर्ड्स, हाँ ना, और चालू एक घंटे तक सामने को वालों को कुछ पता नहीं चल रहा है किससे बात चल रही है, पर सामने वाले इतने मूर्ख भी नहीं है ये तो है कि अपनी माँ से तो बात नहीं कर रहे अपने बाप से तो नहीं कर रहे, अपनी बहन से तो इस तरह नहीं करेंगे कुछ तो गड़बड़ है अंधेरे में, कोई इस कोने में, कोई उस कोने में, इस गली में क्या चल रहा है इधर बातें, हाँ रात को 11 सारी सेवाओं से निवृत्त होने के बाद डायरी लिख ली, रात्रि का योग कर लिया, बाबा को गुड नाइट कर दिया, सारी सेवाओं से निवृत्त, अभी थोड़ा टाइम है, टाइम को सफल क्या कर रहे बातें अकेले हाँ सबके सामने स्वीट नथिंग्स। तो कुमार अर्थात मर जीवा, मर चुके, मैं महाकाल हूं, किस लिए आया हूं, तुम्हें मरने के लिए, ये काम है मेरा। क्या काम है? मारना। भी तैयार। ए आग, कुमार अर्थात आग, अग्नि, ज्वालामुखी, कौन सी आग? वैराग की आग। कौन सी आग? ज्ञान की आग। कौन सी आग? लगन की आग। कौन सी आग? प्रभु प्रेम की आग। कौन सी आग? पवित्रता की आग। कौन सी आग? त्याग की आग। कौन सी आग? तप की आग। ऐसी सप्त अग्नियों के फेरे के साथ जो चलता है वो कुमार है। चलते समय अनुभव करना है, ऐसी आग का गोला है मेरे इर्द गिर्द और मैं चल रहा हूं, इधर से ज्ञान, इधर से पवित्रता, इधर से प्रभु प्रेम, इधर से लगन, इधर से त्याग, इधर से तपस्या, इधर से वैराग, आग, आग ही आग। इस आग में जो चलता है वो है कुमार। जहां आग से गुजर जाए वहां पे सब भस्म। पैर रखो तो धरती कपने लगे, धरती फट जाए, विस्फोटक। कुमार अर्थात डायनामाइट, स्पिरिचुअल डायनामो, स्पिरिचुअल डायनामाइट, स्पिरिचुअल बॉम्ब। जहां गिरो वहां धमाका हो जाए। जब आग, बाइबल में उदाहरण है सैमसन का, वो भी बहुत पावरफुल था। वो कहता था मैं 10 के बराबर हूं बिकॉज माई हार्ट इज प्योर। पर बाद में जब वो गिरता है उसके ये सारे वाक्य कहने की भी हिम्मत नहीं रहती उसके। विकार में जाने के बाद एक चीज तो हो जाती है, व्यक्ति की वाणी का फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, वाणी में थोड़ा सा घबराहट रहती है, हलचल आ जाती है। व्यक्ति वो जो पहले दबंग था, निडर इंट्रिपिड, वो कम हो जाता है थोड़ा, दहाड़ थोड़ी सी, वॉल्यूम उसकी थोड़ी कम हो जाती है। कुमार अर्थात आग, आग उत्पन्न करनी है अपने अंदर और वो आग निरंतर जलती रहे। एक मुरली थी उसमें बाबा ने कहा है जो जानवर होते हैं वो पास ना आए, और पास कब नहीं आएंगे, जब तुम्हारे हाथ में मशाल होगी, आग होगी। तो विकार जानवर है, जब आग होगी भालू आता है क्या? कोई भी नहीं आता है। आग रखनी है, मशाल लेके चलना है, पर ये ना हो कि मशाल लेके तो चल रहे और मशाल बुझ गई और भालू सामने आ जाए, भालू कहेगा मैं तुझे खा जाऊंगा, और हम कहे कि तुम देखते नहीं मशाल, वो कहेगा तुम ही देख लो पहले, मशाल तो लेके घूम रहे पर बुझ गई है। ज्ञान योग धारणा सेवा, सेवा सेवा कर रहे दिन रात और मशाल लेके चल रहे और हमें पता ही नहीं मशाल कब बुझ गई। बाबा ने कहा है ना ज्ञान योग का कलश दिया है सिर पर माताओं के, लेके तो घूम रही है पर अंदर का माल नहीं है कुछ भी, खाली लेके घूम रहे, खाली कलश लेके घूम रहे। हाँ मशाल ही बुझ गई, दिया ही बुझ गया है। इसलिए कुमार अर्थात आग। लास्ट कुमार अर्थात आर, रूहानी योद्धा। कुमार अर्थात जिसने जंग छेड़ी है, किसके साथ? रूहानी मिलिट्री। और मिलिट्री वालों को कैसा रहना पड़ता है? अभी युद्ध है नहीं फिर भी क्या करते हैं? सुबह सुबह प्रैक्टिस, ड्रिल करते रहते हैं। क्यों कर रहे हैं? अभी तो कोई युद्ध के आसार नहीं दिखाई दे रहे, फिर भी युद्ध करते, ड्रिल करते रहते, कसरत करते रहते, बॉडी बिल्डिंग करते रहते, रिहर्सल करते रहते, बंदूक चलाना सीखते रहते, सारी प्रैक्टिस चालू रहती है, उनकी ड्रिल्स होती है। और बहुत कड़ी ड्रिल्स होती है, कमांडो ट्रेनिंग, कैसा भयंकर ट्रेनिंग होता है। यहाँ CRPF में ट्रेनिंग होती है तो वहाँ के डॉक्टर्स भी आते हैं। अब डॉक्टर्स वहाँ जो होते हैं उनका तो काम है पेशेंट देखना, पर उनको भी ड्रिल करनी पड़ती है। वो कहता है ये हमसे नहीं होगा, भाग जाते हैं, क्योंकि उनका तो काम, उन्होंने ये सब तो कभी किया ही नहीं है। पर अगर आप उसमें हो और मिलिट्री डॉक्टर हो तो आपको भी वो सब करना पड़ेगा, सबको जो वहां होंगे। तो योद्धा आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, कैसा आरंभ करना है? प्रचंड आरंभ, किस लिए? लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जब वो लड़ाई की जस्ट अभी लड़ाई शुरू होने वाली होती है, सारे जमा हो जाते हैं, तो कैसा उनमें उमंग उत्साह होता है, बस मार दूं या मर जाऊं। फिर कोई सोचता है मेरी पत्नी मेरे बच्चे का क्या होगा? कोई विचार नहीं होता है, बस अब मारना है या मरना है। करो मरो, बस निकल जाना है। हमारी भी ऐसी स्थिति हो, कुमार अर्थात निरंतर लड़ाई, और लड़ाई तो है ही, निरंतर लड़ाई है, एक दिन की लड़ाई नहीं है, रोज रोज लड़ाई है। महाराष्ट्र का एक संत है, लिखता है दिवस रात्र अम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर बाह्य जग आणि मन। दिन रात ही युद्ध है हमारे लिए, तो ये एक दिन का नहीं, दो दिन का नहीं, प्रतिपल युद्ध है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात हर पल परीक्षा, प्रतिपल परीक्षा है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिवान है, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। घाव लगने चाहिए शरीरों पर, ये घाव जो होते हैं ना, कितने घाव होते थे, डरते थे क्या दूसरे दिन फिर तैयार? हमको एक चोट लगी तो 10 दिन तो उसको हम पकड़ के रखते हैं, पट्टी बट्टी लगा के, अभी कुछ नहीं करना है, 10 दिन आराम। भाई साहब कहाँ है? रेस्ट में है। बहाना ही मिल गया हमको तो, देखा नहीं युद्ध में कितने घाव। ये जो घाव और जख्म योद्धा के आभूषण है, खुश होते हैं और मारो, कुछ नहीं होता है उनको, ऐसे ऐसे करके झाड़ देते हैं वो। और उनकी तितिक्षा, तितिक्षा अर्थात तितिक्षा नहीं, तितिक्षा अर्थात दर्द को सहन करने की शक्ति, तितिक्षा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। हमको तो इतनी सी चोट लगती है, कुछ लगता है तो कैसे पट्टी बिट्टी बांध के ये वो करके और एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। उनको कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, ऐसे ही घूमते हैं जंगलों में। गांव के लोग देखा कितनी पावर होती है उसके शरीरों में, शरीर बहुत शक्तिशाली होता है उनका, कुछ नहीं होता है उनको ना, मौसम बदलता है तो कुछ नहीं होता है। हमको तो क्या हो गया, सर्दी का मौसम बदला ना, इसलिए बरसात हो गई ना, वो हमेशा मुझे ऐसा होता ही है, हर सीजन में होता है। कितना फिक्स है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं ऐसा ही होता है, अरे मौसम क्यों करेगा कुछ, तुम्हारी पावर नहीं अंदर, इसीलिए ये हो रहा है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्या डर, ये जो ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, वो दया का भाव या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो घाव तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल यह गुलाल तुम ये सोच लो, रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या केसरी हो ताल तुम ये सोच लो, जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को तुम आज नकार दो, रिजेक्ट। ये सारी प्रेम कविता है, ये सारे रोमांस, इधर ब्रह्मचर्य की साधना चालू है और फिल्में कौन सी देख रहे, रोमांटिक रोमांस वाली। तो जो देखोगे वो करने की इच्छा होगी, जो फिल्म वाले एक्टर्स उसमें पर्दे पे जो दिखता है ये ऐसा करे, हम भी ऐसा करें, उन्होंने ये किया तो हम क्यों ना करें। बटरफ्लाइज इन द हार्ट, भीगती मसों में आज, मस अर्थात मस मस, दो अर्थ होते हैं, एक तो मस अर्थात ये जो मूछ होती है ना उसके पहले जो छोटे छोटे बाल आते हैं उसको मस कहते हैं, ये एक, पर शायद ये नस भी हो सकता है, मसल्स, मस तो नहीं पता। भीगती मसों में आज, फूगती फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। किससे फ्राई करना है? आग की लपटों से, इससे छोक दो। आरंभ है प्रचंड, इसके लिए वो सारी चीजें जो कमजोर करती है, वो सारी चीजें जो हमको वीक बनाती है, वो सारे संबंध जिसके प्रति जिसकी वजह से हम कमजोर हो रहे, वो सारे कमजोर, काम विकार की जड़ है संबंध। किस व्यक्ति से किस तरह का संबंध जोड़ रखा है, वो संबंध ही हमें छूट दे देता है उसमें उतरने की। किसी से प्रेमी का ही संबंध जोड़ रखा है तो उसी तरह के विचार अपने आप आते हैं। किसी को बहन बनाया है, किसी को कोई माँ है, उनके प्रति नहीं आते, पर जिनको हमने सोचा ये मेरी पत्नी है, ये मेरा प्रेमिका है, ये मेरी ये है फ्रेंड युगल, ये विचार ही अपने आप क्रियाओं की तरफ हमें ले जाता है। अगर ये यहाँ से जड़ से ही इसको हटा दिया जाए, एक मुरली में था मोह का बीज है संबंध, एक वरदान था मुरली में, संबंध पर हम काम नहीं करते, बाकी टाल टालियाँ काटते रहते, उससे बात नहीं करेंगे, मोबाइल का नंबर डिलीट कर देंगे, डिलीट करते फिर सेव करते, डिलीट करते फिर सेव करते, फिर ब्लॉक करते फिर अनब्लॉक करते, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, और यहाँ से पूरे मोबाइल से निकाल देंगे, मेल पर सेव करके रखते, परंतु मुझे पता है कहाँ सेव है, जरूरत पड़ी तो वहां से निकाल लेंगे बैकअप। तो ये सारा जो है ना काम हम इस पर कर रहे हैं, काम किस पर करना है, रिलेशनशिप पर, उसी को वहां से चेंज कर देना है। कुमार अर्थात या तो माँ के बहनों को किस रूप में देखेंगे, एक क्लास इस पर यहां पर कर रही थी ना, बहुत सारे सात आठ रूप है, सबसे पहला तो आत्मा के रूप में देखो, ये आत्मा है, दूसरा ये शिव शक्ति है, तीसरा देवी है, अगला माँ है, बहन है, अगला फरिश्ता है, माँ काली, वो आ गया माँ में, कोई भी माँ देखो, माँ काली देखो, दुर्गा देखो, जैसी देखनी है देखो। ब्रह्मा कुमारी है, टीचर है वो, टीचर अर्थात उसके स्टूडेंट्स है, उन स्टूडेंट्स का उसके प्रति सम्मान है, प्रेम है, आदर है, वो उसको टीचर की दृष्टि से देखते हैं, हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, वो हमारे लिए भी टीचर है, वो जगन माता है, जगत माता है, वो गुरु है। तो ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ी पदवी है, बहुत बड़ा टाइटल, इस टाइटल के आगे दूसरा संसार का कोई भी टाइटल नहीं है, कोई डिग्री कोई क्वालिफिकेशन ब्रह्मा कुमारी टाइटल से बड़ा नहीं है, वो शिव की अर्धांगिनी है और दूसरे के पत्नी पर नजर, और वो भी कौन दूसरा, भैरवनाथ महाकाल, वो उसकी पत्नी है, उससे शादी कर ली है उसने, वो शांत नहीं बैठेगा उधर से, ऐसा दंडा फेंक के मारेगा, फिर मत बोलना ये दंडा कहां से लगा। त्रिशूल है उसके पास, त्रिशूल, अरे उसकी भी जरूरत नहीं है, खुद ही काफी है, इसके पास भी क्या है, त्रिशूल है ना। तो कुमार अर्थात ये पांच बातें, पहली बताई, कुमार अर्थात क्रांतिकारी, जो क्रांति लाए पहले स्वयं के भीतर और फिर दूसरों में, क्रांति के लिए तीन सूत्र क्रांति के, पहला सूत्र अतृप्ति असंतुष्टता, दूसरा शौक, और तीसरा स्वाद आ जाए उस परम आनंद का, तो वो सब व्यर्थ हो जाए, सेंशुअल हैप्पीनेस व्यर्थ लगने लगे, जिस संसार के सुख व्यर्थ लगने लगे। विवेकानंद का स्टेटमेंट, आई हेट दिस वर्ल्ड दिस ड्रीम दिस नाइटमेयर विथ इट्स चर्चेस एंड शिकेनरी विथ इट्स ब्लैक गार्डिज्म विथ इट्स फेयर फेसेस ऑन द सर्फेस एंड हाउ एंड फॉल्स हार्ट्स विथ इट्स हाउलिंग राइटियसनेस ऑन द सर्फेस एंड हॉलोनेस विद इन आई हेट दिस वर्ल्ड विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग मुझे इस संसार से घृणा है। कैसा ये संसार है, दिखावे वाला संसार है, जहाँ पर चेहरे सुंदर है दिल खोटे है, ये कैसा संसार है जहाँ पर सब कुछ बिकता है, सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, और अच्छे अच्छे नाम दे के रखे ऊपर ऊपर से, with its chicanery, with its blackguardism, with its churches. ये सब व्यर्थ है, मुझे नहीं चाहिए ये संसार. तो कुमार अर्थात क्रांतिकारी, कुमार अर्थात ऊर्ध्वरेता योगी, कुमार अर्थात मर्जीवा, कुमार अर्थात आग, कुमार अर्थात रूहानी योद्धा. तो सभी स्थिर बैठ जाएंगे. कुमार आरंभ है प्रचंड. ओम शांति. कल कुमारियों की बारी.
कोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो. आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो. आन वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो. आन वान शान या के जान गाहो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड. करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है. मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है. कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है. कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है. जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो. मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो. आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड. वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो. वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो. या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो. रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो. जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो. भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो. आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. I'm gonna have my dream.